पृष्ठ संख्या एक, यूनिट फर्स्ट का पहला अध्याय, शिक्षा प्रशासन का प्रत्यय। इसमें है अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य एवं क्षेत्र। शिक्षा प्रशासन का अर्थ, हिंदी शब्द प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मिनिस्टर से हुई है, जिसका आशय दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति से है। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ हुआ अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला, और जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक हुआ। खेद है कि आज का प्रशासक बजाय सेवक के मालिक बन गया है, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ ही हो रहा है। दूसरा शब्द एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, जिसका अर्थ होता है टू मैनेज, प्रबंध करना, या टू गवर्न, प्रशासन करना आदि। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से ही होता है, अतएव शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन जिस ढांचे या तंत्र को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे कार्यान्वित करने में सहायक होता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति संभव होती है। शैक्षिक प्रशासन को आज केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं समझा जाता, अपितु शिक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों से इसका गहरा संबंध है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। कक्षा भवन, पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल, कार्यालय, पाठ्येतर क्रियाओं का सफलतापूर्वक संयोजन करना और निरंतर प्रगति के लिए प्रयत्न करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है। शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में कौन व्यक्ति कितनी लगन से कार्य कर रहा है, इसका ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण करना भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। सभी व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाना तथा उसकी कार्य क्षमता को उचित प्रोत्साहन देना, सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करना प्रशासन के कार्यों में ही सम्मिलित है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य कर्मचारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, निदेशक, उप निदेशक आदि सभी मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। इन सभी संबंधित व्यक्तियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों को ठीक प्रकार से समझने तथा उन्हें कार्यान्वित करना प्रशासन का ही कार्य है। पृष्ठ संख्या दो, शिक्षा प्रशासन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रूक एडम्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज द कैपेसिटी टू कोऑर्डिनेट मेनी एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल एनर्जीज इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म सो ज्वाइंटली दैट दे शैल ऑपरेट एज एन यूनिटी, बाय ब्रूक एडम्स। दूसरा, एस एन मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संसाधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स एज वेल एज विद ह्यूमन रिलेशनशिप, दैट इज द बेटर वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपुल। इन फैक्ट इट इज मोर कंसर्न विद ह्यूमन बीइंग एंड लेस विद इनएमिनेट थिंग्स, बाई एस एन मुखर्जी। तीसरा, फॉक्स 20 तथा रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसे सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सर्विस एक्टिविटी थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस मे बी इफेक्टिवली रियलाइज्ड बाई फॉक, विश एंड रफनर। चौथा, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एफर्ट ऑफ personal and utilizing appropriate materials in such a way as to promote effectively and development of human qualities. 5. J.B. Sears के अनुसार शैक्षिक प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है. शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन्स मच दैट वी मीन बाय द वर्ड गवर्नमेंट एंड इज क्लोजली रिलेटेड इन कंटेन्स टू सच वर्ड एज सुप्रिंटेंडेंस, सुपरविजन, प्लानिंग, ओवरसाइट, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाई J.B. Sears. 6. हेनरी फ्योल को प्रशासन प्रक्रिया का पिता कहकर पुकारा जाता है. उनके शब्दों में अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है. लाइक अदर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ 5 एलिमेंट्स एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. 7. मोर्ट तथा रॉस के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की ओर मोड़ना, अध्यापकों को साधन के रूप में प्रयुक्त करना तथा संबंधित जन समुदाय को उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की ओर प्रेरित करना. 8. लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया का विश्लेषण व्यापक अर्थ में फोर्ड कोरब फार्मूले द्वारा प्रस्तुत किया है. इसकी संरचना में निम्नलिखित 7 तत्वों का समावेश है, जो इसके अर्थ को इन 7 प्रशासकीय कार्यों के रूप में विवेचन करते हैं. शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं प्रकृति इस प्रकार है. पोस्ट कोरब की संरचना: पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग नियुक्त करना, डी फॉर डायरेक्शन यानी कि निर्देश देना, CO फॉर कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना, R फॉर रिपोर्टिंग यानी कि आलेख तैयार करना, B फॉर बजटिंग यानी कि बजट बनाना. 9. ग्राहम बेलफोर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य उत्तम छात्रों को योग्य शिक्षकों से समुचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम या योग्य बनाना है, ताकि वे अपने राज्य के अंतर्गत सीमित साधनों तथा प्रशिक्षित होकर अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें. शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं: कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: 1. शैक्षिक प्रशासन की एक समन्वित प्रक्रिया है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस. 2. शैक्षिक प्रशासन की एक मानवीय यानी कि ह्यूमन प्रक्रिया है. 3. शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशील यानी कि फंक्शनल तथा नियंत्रित होती है. 4. शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप दोनों केंद्रीयकरण व विकेंद्रीकरण रूपों में होता है. 5. शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव गतिशील होता है. 6. शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति का लक्ष्य विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाना होता है. 7. शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता पर आधारित होती है. 8. व्यवहारिक प्रैक्टिकेबिलिटी को महत्व दिया जाता है. 9. शैक्षिक कार्यकर्ताओं का व्यावसायिक विकास करना. 10. नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में सभी व्यक्तियों का सहयोग. शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है. 1. है शैक्षिक प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया है यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. यह सभी शिक्षाविदों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति संबंधी मौलिक तत्व जैसे नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि सभी समस्त रूप से एक दूसरे पर आधारित रूप में कार्य करते हैं. अतः यह स्पष्ट है कि इसकी प्रकृति एक समन्वित प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है. 2. शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है. इसमें शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक आदि परिस्थितियों में प्रभावित होती है। यह तथ्य आज सभी विचारकों द्वारा सत्य माना जा रहा है कि शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप की रचना उसके मानवीय तत्वों द्वारा होती है, जिसमें मौलिक तत्वों को उन्हीं के अनुरूप लिया जाता है। तीसरा, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशील तथा नियंत्रित होती है। इसके अंतर्गत आज यह स्पष्ट हो चुका है कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत कार्य की प्रकृति यांत्रिक तथा स्वचालित न होकर कार्यशील एवं नियंत्रित होती है। चौथा, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप केंद्रीयकरण व विकेंद्रीयकरण दो रूपों में होता है। इसके अंतर्गत यह सर्वमान्य है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण दोनों रूपों में पाई जाती है। उदाहरण, फ्रांस में केंद्रीयकरण प्रशासन पाया जाता है, जबकि अमेरिका में विकेंद्रीयकरण प्रशासन अपनाया गया है। वैसे दोनों देशों में प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। पांचवा, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव गतिशील यानी कि डायनामिक होता है। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट है कि शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप की संरचना किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर की जाती है। साथ ही इन तत्वों का परिवर्तन होने पर शैक्षिक प्रशासन में भी परिवर्तन होता रहा है। इस प्रकार इसकी प्रकृति गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। छठवां, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति का लक्ष्य विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाना होता है। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन द्वारा विद्यालयों के अंतर्गत शिक्षक, छात्र तथा अन्य कार्यकर्ताओं के कार्यों में सुधार लाया जाता है। साथ ही उससे संबंधित विधियों, नीतियों, साज सज्जा आदि कार्यों के सुधार किए जाते हैं। सातवां, शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया उपयोगिता पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए शैक्षिक प्रशासन द्वारा इस कार्यों को उपयोगी, महत्वपूर्ण बनाया जाता है ताकि समाज को समृद्धिशील एवं उन्नत किया जा सके। सातवां, शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया उपयोगिता पर आधारित होती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए शैक्षिक प्रशासन द्वारा इस कार्य को उपयोगी, महत्वपूर्ण बनाया जाता है ताकि समाज को समृद्धिशील एवं उन्नत किया जा सके। आठवां, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी। इसके अंतर्गत व्यवहारिकता पर आधारित प्रशासन संबंधी कार्य व्यवहारिक होने चाहिए, न कि सैद्धांतिक। अतः विद्यालय के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्य नियम आदि मानवीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए ताकि वे समाज के लिए उपयोगी हो सकें। नवां, शैक्षिक कार्यकर्ताओं का व्यवसायिक विकास करना। इसके अंतर्गत है, शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता में वृद्धि की जाती है। इसके साथ ही उन्हें व्यवसाय संबंधी सुविधाएं प्रदान करना शैक्षिक प्रशासन का एक मुख्य लक्ष्य माना जाता है। दसवां, नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में सभी व्यक्तियों का सहयोग। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन द्वारा शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। इससे प्रशासन में जनतांत्रिक कार्य व्यवस्था विकसित होती है तथा प्रशासकीय कार्यों द्वारा शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ शिक्षण भी उन्नत तथा प्रभावशाली हो जाता है। शिक्षा प्रशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। समाज में जितनी भी संस्थाएं, समूह तथा संगठन हैं, वे सभी प्रशासन के द्वारा गति प्राप्त करते हैं। प्रशासन वांछित अथवा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें उनके कार्यक्रमों के संचालन के द्वारा सक्रिय बनाए रखता है। सरकार, परिवार, शिक्षा व्यवसाय, उद्योग, सेना, कृषि तथा अन्य प्रकार की सभी संस्थाओं में उत्पादन अथवा निष्पत्ति को प्रशासन का मुख्य गुण माना जाता है। निष्पत्ति जनसेवा, वित्त नियंत्रण, कर्मचारी चयन, प्रशिक्षण एवं नियुक्ति आदि के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सभी तथ्यों पक्षों का समन्वय किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन निष्पत्ति के उत्तम स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। शैक्षिक प्रशासन आज की देन नहीं है, वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ शिक्षा प्रशासन का आरंभ हुआ। राज्य के कुशल एवं सफल संचालन तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक युग में शिक्षा का आश्रय लिया गया। शिक्षा को वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक ढांचे में रखा गया है। प्रशासनिक ढांचे के अनुसार शिक्षा का संचालन किया जाने लगा। विभिन्न युगों में चल रहे शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा assumptions भी बदलती रही है। युग की प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा भी परिवर्तित होते रहते हैं। प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों तथा अवधारणाओं का प्रभाव शैक्षिक प्रशासन की अवधारणाओं तथा उनके सिद्धांतों के विकास पर पड़ा। शिक्षा प्रशासन की अवधारणा के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रशासन का परंपरागत युग ट्रेडिशनल एरा ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत है। शैक्षिक प्रशासन का परंपरावादी युग ज्ञान की संरचना यानी कि बॉडी ऑफ नॉलेज पर आधारित रहा है। यह नीति के विकास यानी कि पॉलिसी डेवलपमेंट तथा नीति क्रियान्वयन यानी कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन तथा प्रशासकों को सीमित करता है। इस किसी पक्ष द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य शक्ति तथा तकनीकी का आश्रय लिया जाता रहा है। इसमें पहला है टेलर के विचार। परंपरावादी विचारधारा के विकास में टेलर फेयान तथा वेबर का विशेष योगदान है। लोक प्रशासन के विद्वान इस बात पर सहमत थे कि नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन अभिकरण पृथक पृथक होने चाहिए। इससे उत्पादन अथवा निष्पत्ति के लक्ष्यों में वृद्धि होती है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को इस संबंध में वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। वह आर्थिक तार्किकता कठिन परिश्रम परिभाषित सामाजिक भूमिका तथा स्थिति में विश्वास करता था। कर्मचारियों के बारे में उसकी राय थी कि उन्हें न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। वह कुछ लोगों के बहुत जल्दी अमीर बनने के पक्ष में नहीं थे। टेलर के विचारों का समाधान इस प्रकार है। पहला समय अध्ययन अधिनियम टाइम स्टडी प्रिंसिपल इसके अंतर्गत सभी उत्पादन कार्य का मापन समय द्वारा होना चाहिए। उत्पादन वस्तुओं की गुणवत्ता का भी इसी समय माप में आ जाता है। दूसरा उत्पादक इकाई पर अधिनियम इसके अनुसार समयानुसार उत्पादक वस्तुओं की मात्रा को गुणवत्ता के अनुपात में श्रम की मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। श्रमिक को उसकी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार अधिकतम तथा उच्चतम स्तर प्राप्त प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा नियोजन तथा निष्पत्ति की पृथकता का अधिनियम सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम परफॉर्मेंस प्रिंसिपल इसके अंतर्गत कर्मचारियों से व्यवस्था अपने हाथों में प्रशासकों को ले लेनी चाहिए। नियोजन यानी कि प्लानिंग का दायित्व तथा यथार्थ रूप से निष्पत्ति अपने हाथों में प्रशासन को ले लेनी चाहिए। चौथा कार्य की वैज्ञानिक विधि का अधिनियम साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्क प्रिंसिपल इसके अंतर्गत व्यवस्थापकों को उत्तम विधियों का निर्धारण करके श्रमिकों को इन विधियों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसे सभी दायित्व कर्मचारियों पर न छोड़कर प्रशासन को स्वयं निभाने चाहिए। पांचवा व्यवस्थापक नियंत्रण अधिनियम मैनेजरियल कंट्रोल प्रिंसिपल इसके अंतर्गत व्यवस्था के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियंत्रण के उपायों के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। छठवा कार्यात्मक व्यवस्था अधिनियम फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसके अंतर्गत सेना की भांति कठोर अनुशासन का सिद्धांत भी औद्योगिक संगठन में अपनाना आवश्यक है। इससे विभिन्न क्रियाओं में समन्वय संभव होता है। टेलर के विचारों के अनुसार कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस किसी भी संगठन तथा प्रशासन की पहली शर्त है। अनुभाविक आंकड़ों यानी कि एम्पिरिकल डाटा के द्वारा कार्य का विश्लेषण कार्य के क्रियान्वयन प्रामाणिक समय दर प्रयुक्त उपकरण व्यवस्थापक तथा कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन के दायित्व के द्वारा वैज्ञानिक प्रशासन संभव होता है। दूसरा मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक नवीन संभावनाओं को जन्म दिया। मैक्स वेबर ने शैक्षिक प्रशासन में संगठन की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर अधिक बल दिया है। मैक्स वेबर ने प्रशासन में नौकरशाही प्रारूप प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर की धारणा थी कि उत्तम उपलब्धि तथा सर्वाधिक लक्ष्य सिद्धि के लिए नौकरशाही प्रारूप से उत्तम कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। कुशलता स्थायित्व अनुशासन तथा लक्ष्य प्राप्ति की विश्वसनीयता के लिए यह सर्वोत्तम प्रारूप है। ब्लो ने वेबर के विचारों की चार विशेषताएं बताई हैं। वो चार विशेषताएं निम्नलिखित हैं: पहला, अधिकारियों का उच्चोक्रम; दूसरा, और व्यक्तित्ववाद; तीसरा, नियमों की व्यवस्था; चौथा, विशेषीकरण की व्यवस्था। नौकरशाही व्यवस्था में व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा अतार्किक तत्वों एवं कारकों का कोई स्थान नहीं है। इस व्यवस्था में श्रम विभाजन पाया जाता है। तकनीकी क्षमता के आधार पर रोजगार दिए जाते हैं। तीसरा, हेनरी फेयोल के विचार। हेनरी फेयोल ने प्रशासन को अनेक तत्वों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स माना है। फेयोल ने उत्तम व्यवस्था को सर्वोत्तम माना है और प्रशासनिक योग्यता के आधार पर इसे स्वीकार किया है। हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक तत्व इस प्रकार बताए हैं। इसमें पहला, नियोजन यानी कि प्लानिंग; दूसरा, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन; तीसरा, कर्मचारी गण यानी कि स्टाफिंग; चौथा, निर्देशन यानी कि डायरेक्शन; पांचवा, समन्वयकरण यानी कि कोऑर्डिनेशन; छठवां, प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्टिंग; तथा सातवां, बजट यानी कि बजटिंग। चौथा, परंपरागत युग और शिक्षा प्रशासन। टेलर तथा मैक्स वेबर के प्रशासनिक सिद्धांत उद्योग के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुए हैं, किंतु शिक्षा के साथ एक मूल विचार जुड़ा हुआ है। शिक्षा उद्योग नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इस दृष्टि से हेनरी फेयोल के विचार शैक्षिक प्रशासन को अधिक प्रभावित करते हैं। हेनरी फेयोल एक खान इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर था। उसने प्रशासनिक प्रक्रिया के अनेक तत्वों पर प्रकाश डाला। पारस्परिक युग में शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा। इसमें पहला, दूसरे महायुद्ध के बाद इस विचार धारणा को के कारण शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक क्रियान्वयन दो अलग अलग धारणाएं बनी। ये एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। दूसरा, आर्थर बी मोहेलमैन के अनुभव ने अनुभव किया कि विद्यालयों का स्वरूप और गैर राजनीतिक होना चाहिए। तीसरा, अमेरिका तथा अन्य प्रगतिशील देशों में शैक्षिक प्रशासन टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठित किया गया। चौथा, विद्यालयों के प्रबंधकों का काम निष्पत्ति निर्धारित तथा प्राप्ति हेतु नीति बनाना हो गया। शिक्षा प्रशासनों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में क्या तथा क्यों करना है, इसका प्रभाव क्या होगा। पांचवा, क्यूबर ले ने विद्यालय अधीक्षक के विषय में कहा है कि शिक्षा अधीक्षक स्कूलों के संगठन तथा निदेशक है। वह स्कूलों में दिए गए निर्देशों का पर्यवेक्षक है, परामर्शदाता है, प्रेरक है तथा शिक्षकों का मित्र है। छठवां, इस युग में शैक्षिक कार्य तथा कार्य विधियों को विशेष महत्व दिया गया। सातवां, इस युग में शिक्षा प्रशासन से संबंधित विभिन्न अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का संचालन होने लगा। आठवां, इस युग में नौकरशाही प्रशासन प्रारूप को प्राथमिकता दी गई। इसमें संगठित अधिकारियों तथा उनके पद सोपानों को महत्व दिया गया। इसमें अधिकारी तथा अधीनस्थ के मध्य लिखित नियमावली के आधार पर विद्यालयी प्रशासन को संगठित किया जाने लगा। भारत में सन 1920 से सन 1940 के मध्य पेयोल द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही प्रभाव के द्वारा शिक्षा प्रशासन किया जाता रहा। फेयरल द्वारा निर्मित तथा कैंपवेल एवं उसके सहयोगियों द्वारा विकसित व्यवस्था तत्व सिद्धांत को विश्व भर में मान्यता दी गई। शिक्षा प्रशासन ने विभिन्न तत्वों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन एवं विशेषीकरण, स्पेसिफिकेशन जिसको कहते हैं, को महत्व दिया जाने लगा। १९५४ में अमेरिका में शिक्षा प्रशासन में सहकारी कार्यक्रम इस आधार पर प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में पहला, आवश्यकताओं की परिभाषा तथा समस्याओं की पहचान; दूसरा, सूचना एकत्रीकरण, स्रोतों का निर्धारण तथा परामर्श; तीसरा, नीति निर्धारण, कार्यप्रणाली तथा वैकल्पिक प्रस्ताव; चौथा, योजना का आरंभ तथा क्रियान्वयन; पांचवा एवं प्रगति का मूल्यांकन तत्वों को सम्मिलित किया गया। ग्रेग तथा कैंपवेल ने इसी आधार पर नियोजन, आवंटन, प्रेरणा, समन्वय तथा मूल्यांकन तत्वों को विकसित किया। पारस्परिक युग में शैक्षिक प्रशासन के बारे में रॉल्फ वी किम्ब्रो एवं माइकल ननरी ने कहा है, शिक्षा संगठन के लिए आवश्यक है कि वह निर्णयों के अनुसार कार्य करे और मौलिक तथा मानवीय स्रोतों के अनुसार नियोजन, प्रेरणा आदि के द्वारा पूर्व निर्धारित योजना तथा कार्यक्रम के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करें। आधुनिक युग का शैक्षिक प्रशासन, प्रेजेंट एरा ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आधुनिक युग को प्रणाली आयाम, सिस्टम अप्रोच का युग कहा जाता है। समाजशास्त्र के व्यवस्था सिद्धांतों से शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास हुआ। अन्य क्षेत्रों के ज्ञान तथा अवबोध यानी कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का सामान्य प्रशासन में उपयोग करने पर इस युग में विचार हुआ। वर्तमान शिक्षा प्रशासन पर व्यवस्था सिद्धांत यानी कि सिस्टम थ्योरी का प्रभाव पड़ा। प्रशासन की समस्याओं को समझने तथा हल करने में विश्लेषणात्मक आयाम बना दिया गया। यह गुण प्रत्येक संस्था तथा विद्यालय की प्रणाली सिद्धम सिस्टम मानता है। फ्लेगल यानी कि सी डी फ्लेगल के शब्दों में व्यवस्था पूर्व निर्धारित कार्यों को सरकारी आधार पर करने हेतु अंतः क्रियात्मक तत्वों का समन्वित प्रयास है। क्रिम्बो तथा माइके ने इस युग में व्यवस्था सिद्धांत को मूर्ति मुक्त एवं जीवन सामाजिक व्यवस्था एवं संगठनात्मक व्यवस्था माना है। व्यवस्था युग के प्रशासन संबंधी कुछ विचार इस प्रकार हैं। इसमें पहला विचार है, सभी संगठन अंतः क्रियात्मक उपव्यवस्थाओं से जुड़े हैं। प्रत्येक उपव्यवस्था अपने भाग को योगदान करती है। दूसरा, अव्यवस्था, पतन, विघटन आदि ध्वंसात्मक प्रक्रिया पर नियंत्रण करने के लिए आंतरिक तथा बाह्य संतुलन संगठनों को करना पड़ता है। तीसरा, संगठनात्मक नियंत्रण के लिए पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। चौथा, वास्तविक एवं प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई क्रियाओं को नियोजित किया जाता है, इससे परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। उपरोक्त विचारों का शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत तथा व्यवहार पर प्रभाव पड़ा है। विद्यालय तथा शिक्षा विभाग को एक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। शैक्षिक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए शैक्षिक प्रशासन को सामाजिक प्रक्रिया माने जाने लगा है। पार्शल यानी कि टी पार्शल के शब्दों में अन्य जटिल संवेदनाओं की भांति शिक्षा को तकनीकी प्रबंधनात्मक तथा संस्थागत व्यवस्था के रूप में समझा जाता है। तकनीकी व्यवस्था में शिक्षण, शिक्षक तथा वास्तविक कार्य निष्पत्ति आते हैं। प्रबंधनात्मक व्यवस्था में कार्य निष्पत्ति यानी कि टास्क परफॉर्मेंस तथा तकनीकी प्रणाली के साथ समन्वय होता है। संस्थागत व्यवस्था में वातावरण के संदर्भ में विचार किया जाता है। विद्यालयों को मुक्त व्यवस्था यानी कि ओपन सिस्टम के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह मुक्त स्थिति विद्यालय अनुसार भिन्न होती है। यह मुक्त स्थिति अत्यधिक नहीं होनी चाहिए और अत्यंत मुक्तता का प्रभाव ऋणात्मक होता है। शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता एवं उपयोगिता, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन नीड एंड यूटिलिटी। किसी भी देश के प्रशासन की कुशलता का विकास उस देश की शिक्षा व्यवस्था से होता है। शिक्षा व्यवस्था की कुशलता शैक्षिक प्रशासन पर निर्भर करती है। शिक्षा प्रशासन देश के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है तथा क्रियान्वित कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र का संगठन किया जाता है। यह प्रशासनिक तंत्र जितना प्रभावशाली होगा उतना ही सफल प्रयास शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का होगा। ग्रेग के शब्दों में शिक्षा प्रशासन उपयुक्त सामग्री की उपयोग करने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय गुणों को प्रभावकारी ढंग से विकसित किया जाता है। यह केवल बच्चों तथा युवकों से ही संबंधित नहीं है वरन पौधों विशेषतः विद्यालय कर्मचारी के विकास से भी संबंधित है। संसार का व्यापार हानि लाभ अवधारणा के द्वारा संचालित होता है। शिक्षा का कार्य हानि लाभ के ज्ञान के बगैर संचालित किए जाने पर उद्देश्यहीन हो जाता है। इसलिए शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा अनुसंधान विश्वकोश में कहा गया है, शैक्षिक प्रशासन कर्मचारियों के प्रयासों को संगठित एवं मानव गुणों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए साधनों के उचित उपयोग की प्रक्रिया है। इसका संबंध केवल बच्चों से ही नहीं है, वरन पौरों से संबंधित शिक्षा कर्मचारियों से भी है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ पर्सनल एंड यूटिलाइजिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल इन सच अ वे एट अ प्रमोट इफेक्टिवली एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज। इट इज कंसर्न नॉट ओनली विथ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ बट ऑल्सो विद द ग्रोथ ऑफ एडल्ट एंड पर्टिकुलरली विथ ग्रोथ ऑफ स्कूल पर्सनल। इस दृष्टि से शिक्षा प्रशासन की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा, समाज के लक्ष्यों की पहचान करना। तीसरा, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करना। चौथा, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना। पांचवा, साधनों का उपयोग करना। छठवा, समन्वय तथा नियंत्रण करना। तथा सातवा, मूल्यांकन करना। इन आवश्यकताओं का विस्तृत वर्णन यहाँ दिया गया है। पहला, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन नियोजकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है। शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन अनेक कार्यक्रम बनाता है, इन कार्यक्रमों को वह लागू कराता है। दूसरा, समाज के लक्ष्यों की पहचान। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता इसलिए भी है कि वह शैक्षिक कार्य तथा नियोजन में समाज की आवश्यकता की पहचान है। समाज के दर्श, रीति रिवाजों, प्रथाओं, आदर्शों, आशा तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण करता है। तीसरा, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करना। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता तथा उनकी पारस्परिकता के संदर्भ से परिभाषित करता है। चौथा, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन। समाज की आवश्यकता तथा शैक्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में बालकों तथा अभिभावकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन करने के लिए भी शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता होती है। पांचवा, साधनों का उपयोग। शैक्षिक लक्ष्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि उपलब्ध साधनों का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाता। शिक्षा प्रशासन क्रियान्वय अभिकरण यानी कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी को समस्त साधन उपलब्ध कराता है। छठवां, समन्वय तथा नियंत्रण। शिक्षा प्रशासन समस्त साधनों का समन्वय करता है तथा अनेक उपयोग पर नियंत्रण करता है। समन्वय तथा नियंत्रण से कुशलता विकसित होती है, दोहरापन नहीं होता है, संघर्ष समाप्त हो जाता है और अपव्यय की संभावना नहीं रहती। सातवां, मूल्यांकन। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन निष्पत्ति के संदर्भ में अपने क्रियाकलापों तथा परिणामों का मूल्यांकन करता है। वह इस बात का पता लगाता है कि शिक्षा कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे और भावी प्रगति के लिए उनमें क्या सुधार किए जाने आवश्यक है। उपरोक्त आवश्यकता के कारण शिक्षा प्रशासन सफल शैक्षिक प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता सर्वविदित है। अन्य क्षेत्रों में प्रशासन जिस प्रकार क्रियाशील होता है, आज के युग में शिक्षा प्रशासन केवल क्रियान्वय अभिकरण नहीं है, वरन यह नियोजन अभिकरण भी है। अतः नियोजन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, ये तीनों कार्य शिक्षा प्रशासन को करने पड़ते हैं। इसलिए शिक्षा प्रशासन की उपयोगिता इस प्रकार है। पहला, मानवीय संबंधों का विकास। दूसरा, प्रयासों का एकीकरण। तीसरा, संबंधों की व्यवस्था। चौथा, शिक्षा को सेवा मानना। पांचवा, शैक्षिक प्रक्रिया को गति देना। तथा छठवा, समग्रता। शिक्षा प्रशासन की प्रमुख उपयोगिताओं का विस्तृत वर्णन यहाँ दिया गया है। इसमें पहला, मानवीय संबंधों का विकास। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन का कार्य क्षेत्र मानव संबंध है। छात्रों, शिक्षकों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा प्रशासन सदा क्रियाशील रहता है। पोर्ट तथा रॉस के शब्दों में शैक्षिक प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को साधन बनाकर छात्रों का विकास करता है। यह विकास समाज में स्वस्थ मानव संबंधों के लिए किया जाता है। दूसरा, प्रयासों का एकीकरण। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन शिक्षा संबंधी किए जा रहे प्रयासों को एकीकृत करता है। इस एकीकरण का लक्ष्य समाज में व्यवस्था, एकता, समायोजन तथा सहयोग का निर्माण करना है। तीसरा, संबंधों की व्यवस्था। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन मानव तथा पदार्थों के संबंधों की व्यवस्था मानव विकास के संदर्भ में कार्य करता है। डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानव संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित है। यह मिलजुलकर अच्छा कार्य करने पर बल देता है। इसका संबंध सजीवों से अधिक भौतिक पदार्थों से कम है। चौथा, शिक्षा को सेवा मानना। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन शिक्षा को सेवा कार्य यानी कि सर्विस एक्टिविटी मानकर चलता है। अतः इसमें लगन तथा मिशनरी भावना का प्राधान्य रहता है। शिक्षा अन्य कार्यों की अपेक्षा अलग तथा ढंग का कार्य है, जिसका उद्देश्य मानव में निहित गुणों का विकास करना है। पांचवा, शैक्षिक प्रक्रिया को गति देना। शैक्षिक प्रशासन संदर्भ में मूल्यांकन प्रक्रिया गति देता है। इस गति इस प्रकार दी जाती है। पहला, शिक्षा में लक्ष्यों का निर्माण तथा निश्चित संदर्भ में मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करना। दूसरा, उपलब्ध सामग्री तथा आंकड़ों की पहचान करना तथा इनके द्वारा सामग्री तथा आंकड़ों के उपयोग पर विचार करना। तीसरा, आंकड़ों को एकत्र करने के लिए विधियों को विकसित करना। परीक्षण, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा व्याख्या द्वारा प्रभावशाली उपलब्धि की ओर अंगांकित होना। चौथा, समूह चर्चा तथा अन्य विधियों द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या करना। पांचवा, परिश्रमों का समन्वय एवं संक्षिप्तीकरण। छठवां, समग्रता। शिक्षा प्रशासन की उपयोगिता इसकी समग्रता में है। शिक्षा टुकड़ों में बांटकर देखी परखी जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका समान प्रभाव व्यक्ति को किस प्रकार विकसित करता है, शिक्षा प्रशासन इस विषय में प्रयास करता है। ब्रम एडम्स के अनुसार शिक्षा प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने को क्षमता होती है। परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को वह इस प्रकार जोड़ता है कि सब एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा प्रशासन शिक्षा की प्रक्रिया के समग्र एवं सफल संचालन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। समाज के लिए, व्यक्ति तथा समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी है। शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्य और लक्ष्य दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अधिक अंतर है। इसलिए उद्देश्यों की चर्चा करने से पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उद्देश्य और लक्ष्य के अंतर को समझा जाए। लक्ष्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ एम्स। लक्ष्य वह पूर्ण अनुमानित कार्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा क्रिया करने में मानव को प्रेरित करता है। इसलिए बिना लक्ष्य के हम जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि लक्ष्य सदैव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अतः लक्ष्य की प्रकृति अत्यंत व्यापक एवं दीर्घकालीन होती है। इस प्रकार लक्ष्य लंबे समय में पाने वाले ध्येय हैं। उद्देश्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य का स्वरूप अल्पकालीन एवं सीमित होता है। लक्ष्य के अर्थ को NCERT द्वारा इस प्रकार दिया है, उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में हम कार्य करते हैं अथवा वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे हम क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं तथा उस ओर क्रिया करते हैं। अतः उद्देश्य के अंतर्गत तीन बातों पर, पहला दिशा यानी कि डायरेक्शन, दूसरा व्यवस्थित परिवर्तन तथा तीसरा क्रिया यानी कि एक्टिविटी पर बल दिया जाता है। अतः उद्देश्य व्यवहारिक एवं कार्य पूरक होते हैं। शिक्षा लक्ष्य और उद्देश्यों को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया गया है। शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें शिक्षा के लक्ष्य और शिक्षा के उद्देश्य को 7 बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। हम पहले आपको शिक्षा के लक्ष्य के 7 बिंदु बताते हैं। इसमें पहला बिंदु है, इनका आधार दार्शनिक होता है। दूसरा, इनका रूप अधिक व्यापक होता है। तीसरा, इनकी प्राप्ति अप्रत्यक्ष रूप में की जाती है। चौथा, इनकी प्रकृति औपचारिक होती है। पांचवा, इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है। छठवां, शिक्षण की क्रिया को दिशा प्रदान करते हैं। सातवां, शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। अब शिक्षा के उद्देश्य के 7 बिंदु। पहला, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा, इनका रूप संकुचित एवं विशिष्ट होता है। तीसरा, इनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप में की जाती है। चौथा, इसका स्वरूप व्यवहारिक होता है। पांचवा, इनकी प्राप्ति शिक्षण के एक कालांश में की जाती है। छठवां, शिक्षण का स्वरूप विकसित करते हैं जिसमें शिक्षण की विधियां प्रविधियां निहित होती हैं। सातवां, शिक्षण का नियोजन करते हैं। ये 7 बिंदु थे शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य के। अब शिक्षा प्रशासन का लक्ष्य, एम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्य दीर्घकालीन तथा दार्शनिक प्रकृति के होते हैं। शिक्षा प्रशासन का लक्ष्य होता है मानव शक्ति के स्रोतों का पूर्ण विकास करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों की सहायता से की जा सकती है। पीसी रेन ने शिक्षा प्रशासन के लक्ष्यों का उल्लेख किया है। वे लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला, छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा, छात्रों का चारित्रिक विकास करना। तीसरा, छात्रों को समुचित व्यवस्था संबंध सुविधाएं प्रदान करना। चौथा, आदर्श के प्रति आस्था उत्पन्न करके छात्रों में आत्मविश्वास लाना। पांचवा, छात्रों के विकास हेतु विद्यालय का समुचित संगठन करना। छठवां, छात्रों के विचार एवं दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। सातवां, छात्रों की सौंदर्य अनुभूति शक्तियों का विकास करना। उपरोक्त शिक्षा प्रशासन के लक्ष्य प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं है, जबकि भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। इसलिए शैक्षिक प्रशासन के प्रजातांत्रिक लक्ष्य का विवरण इस प्रकार है। पहला, छात्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों व गुणों में आस्था उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को उचित नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा, विद्यालय में उचित सामाजिक तथा भौतिक वातावरण निर्मित करना। चौथा, शिक्षकों तथा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। पांचवा, कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। छठवां, राष्ट्रीय विकास हेतु उत्तम नागरिकता के विकास पर बल देना। सातवां, छात्रों में आत्मविश्वास संबंधी गुणों का विकास करना। आठवां, छात्रों में व्यवसायिक एवं तकनीकी कुशलताओं का विकास करना। उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति निम्नलिखित शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों की सहायता से की जा सकती है। शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य एवं लक्ष्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु पूरक हैं। शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य सैद्धांतिक होता है और उद्देश्य व्यवहारिक होते हैं। अनेक विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को प्रतिपादन हेतु एक सूत्र दिया है जिसे पोस्ड कोर्ब यानी कि POSDCORB कहते हैं। 8 अक्षरों से 7 उद्देश्यों को प्रदर्शित किया है। इसमें पहला पी फॉर प्लानिंग यानी कि नियोजन करना। दूसरा ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्था करना। तीसरा एस फॉर स्टाफिंग यानी कि नियुक्तियां करना। चौथा डी फॉर डायरेक्शन यानी कि निर्देशन देना। पांचवा CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय करना। छठवां R फॉर रिपोर्टिंग यानी कि आलेख तैयार करना। तथा सातवां B फॉर बजटिंग यानी कि बजट बनाना या वित्तीय आलेख तैयार करना। उपरोक्त सभी कार्य शिक्षा प्रशासन के प्रबंधन के अंतर्गत करने होते हैं। यही प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। इन उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पहला, नियोजन करना। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से शिक्षा संबंधी योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। दूसरा, व्यवस्था करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। योजना तैयार करने के पश्चात उसको कार्य रूप में लागू करना और शैक्षिक क्रियाओं का संपादन करना है। तीसरा, नियुक्तियां करना यानी कि स्टाफिंग। विद्यालय के कार्य संचालन हेतु शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य पदों पर सुयोग्य एवं आवश्यक पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्तियां करना। चौथा, निर्देशन देना यानी कि डायरेक्टिंग। विद्यालय के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना तथा कर्मचारियों को निर्देशन देना। गतिविधियों में सुधार करना तथा समुचित निर्देशन देना है। पांचवा, समन्वय करना यानी कि कोऑर्डिनेशन। शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य विद्यालय कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना, पारस्परिक अच्छे संबंध स्थापित करना है। शिक्षा के सिद्धांतों एवं नियमों और उनकी व्यावहारिकता में समन्वय स्थापित करना। छठवां, आलेख तैयार करना यानी कि रिपोर्टिंग। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य अपने सभी कार्यक्रम का आलेख तैयार करना तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना होता है। इसके अंतर्गत निरीक्षण करना और शोध कार्यों को बढ़ावा देना भी है। सातवां, वित्तीय आलेख तैयार करना यानी कि बजटिंग। अंतिम उद्देश्य समस्त शैक्षिक क्रियाओं के संपादन में अर्थव्यवस्था का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का प्रतिपादन अनेकों विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है। उन सभी उद्देश्यों की समीक्षा यहाँ दी गई है। शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्ति को उसकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप कार्य प्रदान करना। दूसरा, शैक्षिक कार्यों की जटिलता को सरल बनाना। तीसरा, शिक्षण हेतु समुचित वातावरण उत्पन्न करना। चौथा, कर्मचारियों में परस्पर अच्छी भावना का विकास करना और उन्हें प्रोत्साहन देना। पांचवा, शैक्षिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करना तथा और उन्हें निर्देशन प्रदान करना। छठवां, शिक्षण संबंधी साधनों तथा उपकरणों की व्यवस्था करना। सातवां, योग्य शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना। आठवां, शैक्षिक कार्यक्रमों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना और समस्याओं का समाधान करना। नौवां, शोध कार्यों के लिए समुचित वातावरण तथा साधन उपलब्ध करना। दसवां, शैक्षिक अर्थव्यवस्था के लिए बजट बनाना। शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र इस प्रकार है। पहला, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा, समाज के लक्ष्यों की पहचान करना। तीसरा, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करना। चौथा, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना। पांचवा, साधनों का उपयोग करना तथा छठवां, समन्वय एवं नियंत्रण करना। पहला, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन शिक्षा नियोजकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासशील होता है। शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रशासन अनेक कार्यक्रम बनाता है। इन कार्यक्रमों को वह लागू करता है। दूसरा, समाज के लक्ष्यों की पहचान करना। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता इसलिए भी है कि वह शैक्षिक कार्य तथा नियोजन में समाज की आवश्यकता की पहचान है। समाज के दर्शन, रीति रिवाजों, प्रथाओं, आदर्शों, आशा तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण करता है। तीसरा, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करना। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता और उनकी पारस्परिकता के संदर्भ में परिभाषित करता है। चौथा, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना। समाज की आवश्यकता तथा शैक्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में बालकों तथा अभिभावकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन करने के लिए भी शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता होती है। पांचवा, साधनों का उपयोग। शैक्षिक लक्ष्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि उपलब्ध साधनों का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाता। शिक्षा प्रशासन क्रियान्वयन अभिकरण यानी कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी को समस्त साधन उपलब्ध कराता है। छठवां, समन्वय तथा नियंत्रण। शिक्षा प्रशासन समस्त साधनों का समन्वय करता है तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण करता है। समन्वय तथा नियंत्रण से कुशलता विकसित होती है, दोहरापन नहीं होता है, संघर्ष समाप्त हो जाता है और अपव्यय की संभावना नहीं रहती। मूल्यांकन। शिक्षा प्रशासन निष्पत्ति के संदर्भ में अपने क्रियाकलापों तथा परिणामों को मूल्यांकन करता है। वह इस बात का पता लगाता है कि शिक्षा कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे हैं और भावी प्रगति के लिए उनमें क्या सुधार किए जाने आवश्यक हैं। प्रशासन तथा पर्यवेक्षण में भेद, द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। शिक्षा क्षेत्र में प्रशासन तथा पर्यवेक्षण दोनों ही प्रत्यय नवीन तथा महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्र भारत में कम व्यय में सर्वोत्तम कार्यों को करने के साधनों पर विचार किया गया है। किसी शिक्षण संस्था में कक्षा भवनों का निर्माण, क्रीड़ा क्षेत्र, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की सुव्यवस्था का कार्य प्रशासन के अंतर्गत ही आता है, परंतु पर्यवेक्षण का उद्देश्य प्रशासन के उद्देश्य से कुछ भिन्न होता है। शिक्षकों की शिक्षण विधि में सुधार, शिक्षण सामग्री के उचित सुधार, शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन, छात्रों को वांछित उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति कराने का प्रयास आदि ऐसे कार्यों को पर्यवेक्षण के कार्यों में गिनाया जा सकता है जिनमें शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति होने की संभावना हो। पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों का प्रभाव संस्था में तथा संस्था से बाहर गुणात्मक रूप होता है। जिस संस्था में पर्यवेक्षण की उत्तम विधियों को अपनाया जाता है उस संस्था का परीक्षण परिणाम उन्नत होता है तथा संरक्षक भी उस संस्था की प्रशंसा करते हैं। विलियम टी मेलीशियर ने प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के अंतर को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल बिगिंस विथ गेटिंग द सिटीजन्स टू प्रोवाइड बिल्डिंग एंड ग्राउंड, कंटिन्यूज थ्रू मेंटेनेंस, सिक्योरिंग टीचर्स एंड सप्लाईज एंड प्रोवाइडिंग जनरल ओवरसाइट ऑफ द सिचुएशन इन विच टीचर एंड पीपल आर टूगेदर इन अ क्लासरूम। दूसरा, सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन बिगिंस विद द टीचर एट वर्क इन द क्लास रूम, इट एंड्स विद रिपोर्ट्स टू पेरेंट्स एंड विद इंटरव्यू। विलियम टी मेल हियर। प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के कार्यों की भिन्नता वास्तव में प्रशासक के निश्चय पर अवलंबित होती है। शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य को प्रशासक तथा पर्यवेक्षक दोनों के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में कोई प्रधानाचार्य कक्षा भवन में प्रवेश करते हैं, कक्षा में चारों ओर दृष्टि डालकर डायरी में कुछ लिखकर तथा शिक्षक की ओर सिर हिलाकर कक्षा से बाहर चले जाते हैं। उस समय प्रशासन तथा पर्यवेक्षण दोनों में से किसी कार्य का सही ज्ञान प्रधानाचार्य के उद्देश्य तथा निश्चय को जानकर ही किया जा सकता है। इसका सही स्पष्टीकरण है, यदि इस समय प्रधानाचार्य का उद्देश्य कक्षा भवन के बाह्य वातावरण का निरीक्षण करना है, अर्थात कक्षा भवन के रोशनदान, फर्नीचर, सफेदी आदि पर ध्यान आकर्षण करना है, तो प्रधानाचार्य का कार्य प्रशासन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य का तत्कालीन उद्देश्य यदि शिक्षक की शिक्षण विधि, कक्षा अनुशासन, शिक्षण सामग्री का प्रयोग आदि कार्यों की ओर ध्यान देना है, तो उनके कार्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। पर्यवेक्षण एक ऐसी शैक्षिक सेवा है जिसका संबंध विशेष रूप से शैक्षिक दशाओं में सुधार करना है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा इन सभी कार्यों की अवस्थाओं में उन्नति प्रदान करना पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य समझा जाता है। इन सभी कार्यों की अवस्थाओं में उन्नति प्रदान करना पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य समझा जाता है। पर्यवेक्षण के संबंध में एडम्स तथा डिक्की ने अपनी पुस्तक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन में लिखा है, सुपरविजन इज अ सर्विस पर्टिकुलरली कंसर्न विद इंस्ट्रक्शन एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। इट इज डायरेक्टली कंसर्न विद टीचर एंड लर्निंग एंड विद द फैक्टर्स इंक्लूड इन एंड रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, द टीचर एंड द पुपिल, द करिकुलम, द मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन, द सोशियो फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। ऐसा लिखा गया है पी एडम्स, फ्रैंक जी डिक्की के अनुसार। प्रशासनिक कार्यों का उद्देश्य भी संस्था की उन्नति करना ही होता है, यथा बजट का निर्माण, भवन निर्माण, समय विभाग चक्र निर्माण आदि अनेक कार्य संस्था की उन्नति में ही सहायक होते हैं, परंतु ये सभी कार्य परोक्ष में ही सहायक होते हैं। परंतु ऐसे कार्य जो प्रत्यक्ष रूप में शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति में सहायक होते हैं वे पर्यवेक्षण संबंधी कार्य होते हैं। एडम्स तथा डिक्की ने प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के अंतर को इन शब्दों में स्पष्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आर कंसर्न प्राइमरली विद द मटेरियल फैसिलिटीज एंड द ऑपरेशन ऑफ द स्कूल। सुपरविजरी फंक्शंस आर कंसर्न विद इम्प्रूविंग द लर्निंग सिचुएशंस। प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के पारस्परिक अंतर को संक्षेप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। पहला, प्रशासन का कार्य संस्था में भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, परंतु पर्यवेक्षण का ध्यान इस ओर न होकर शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति हेतु साधनों को जुटाना है। दूसरा, प्रशासन का मुख्य कार्य संस्था के संचालन में निहित है, परंतु पर्यवेक्षण संस्था को चलाने वाले शिक्षकों की दिशा में उन्नति के उपायों पर ध्यान देता है। तीसरा, संस्था के भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के निर्माण का उत्तरदायित्व प्रशासन पर ही होता है। पर्यवेक्षण का सीधा संबंध इसके निर्माण से न होकर इसमें किए जाने वाले शिक्षण कार्य की ओर ध्यान देना होता है। चौथा, समय विभाग चक्र बनाना, शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार कक्षाओं में भेजना, पाठ्येतर क्रियाओं के लिए समय आदि का निश्चय करना प्रशासनिक कार्य होते हैं, किंतु पर्यवेक्षण तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित सभी तत्व, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री आदि को उन्नत अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। अधिगम अभ्यास, लर्निंग एक्सरसाइज। शिक्षा प्रशासन के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आधुनिक युग के शिक्षण प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा, शिक्षा प्रशासन के प्रकार एवं प्रकृति को बताइए। तीसरा, एकत्र शिक्षा प्रशासन तथा प्रजातांत्रात्मक शिक्षा प्रशासन में अंतर बताइए। चौथा, शिक्षा प्रशासन के कारकों को बताइए तथा वातावरणीय कारकों का वर्णन भी कीजिए। पांचवा, शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता एवं उपयोगिता बताइए और शिक्षा प्रशासन के कार्य बताइए। छठवा, शिक्षा प्रशासन में प्रधानाचार्य के कार्यों को बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें पहला, आधुनिक युग में शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं को बताइए। दूसरा, शिक्षा प्रशासन की प्रमुख आवश्यकता एवं उपयोगिता बताइए। तीसरा, शिक्षा प्रशासन के मुख्य कारकों को बताइए। चौथा, शिक्षा प्रशासन के कार्यों को गिनवाइए। पांचवा, शिक्षा प्रशासन के प्रधानाचार्य के कार्यों को बताइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें पहला, शिक्षा प्रशासन के पारस्परिक युग सबसे अधिक योगदान भरने के लिए का है। दूसरा, आधुनिक शिक्षा प्रशासन की देन है भरने के लिए है। तीसरा, एक तंत्र शिक्षा प्रशासन तथा प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन द्वारा शिक्षा प्रशासन की, इसमें भरिए, फिर उसके बाद का बोध होता है। चौथा, शिक्षा प्रशासन में समानता और स्वतंत्रता भरिए, फिर उसके बाद शिक्षा प्रशासन में दी जाती है। पांचवा, शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता शैक्षिक, इसमें भरना है, उसके बाद प्राप्ति के लिए होती है। छठवा, नियोजन व्यवस्था, नियंत्रण तथा मूल्यांकन, इसमें भरना है, के मुख्य कार्य हैं। कुंजी, पहले के लिए मैक्स वेबर, दूसरे के लिए प्रणाली विश्लेषण, तीसरे के लिए प्रकृति, चौथे के लिए प्रजातांत्रिक, पांचवें के लिए उद्देश्यों, छठवें के लिए शिक्षा प्रशासन। सत्य असत्य प्रश्न। इसमें पहला है, आधुनिक शिक्षा प्रशासन का प्रारूप मैक्स वेबर ने दिया है, सत्य है या असत्य है। दूसरा, प्रणाली विश्लेषण आयाम आधुनिक युग की देन है, सत्य है या असत्य है। तीसरा, समानता एवं स्वतंत्रता एक तंत्र शिक्षा प्रशासन की देन है, सत्य है या असत्य है। चौथा, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा प्रशासन द्वारा की जाती है, ये सत्य है या असत्य है। पांचवा, एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका अहम होती है, सत्य है या असत्य है। छठवां, शिक्षा नियोजन व्यवस्था मूल्यांकन शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य होते हैं, सत्य है या असत्य है। कुंजी, पहले के लिए असत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए असत्य, चौथे के लिए सत्य, पांचवें के लिए सत्य, छठवें के लिए भी सत्य। एक बार फिर सुन लीजिए, कुंजी, पहले के लिए असत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए असत्य, चौथे के लिए सत्य, पांचवें के लिए सत्य एवं छठवें के लिए सत्य। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला, पारस्परिक शिक्षा प्रशासन की देन है। ऑप्शन, कार्य विश्लेषण, ब, संगठन की संरचना, स, दोनों की, द, कोई भी नहीं। दूसरा, शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण देन है। अ, आधुनिक युग की, ब, परंपरागत युग की, स, दोनों की, द, किसी को भी नहीं। तीसरा, शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य हैं। अ, व्यवस्था करना, ब, नियोजन करना, स, नियंत्रण करना, द, उपरोक्त सभी। चौथा, एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका होती है। अ, अध्यापकों की, ब, प्रधानाचार्य की, स, दोनों की, द, कोई भी नहीं। पांचवा, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता है। अ, समानता, ब, स्वतंत्रता, स, सार्वभौतिकता, द, उपरोक्त सभी। छठवां, शिक्षा प्रशासन के कारक हैं। अ, व्यक्तिगत कारक, ब, वातावरणीय कारक, स, दोनों प्रकार, द, कोई नहीं। सातवां, प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य होता है। अ, शिक्षा की व्यवस्था, ब, प्रशासनिक कार्य, स, वित्तीय आलेख, द, उपरोक्त सभी। कुंजी, पहले के लिए स, दूसरे के लिए अ, तीसरे के लिए द, चौथे के लिए स, पांचवें के लिए द, छठवें के लिए स, सातवें के लिए द।